दसवां अध्याय। फिर वो वहां से उठकर यहूदिया के सिवानों में और यरदन के पार आया और भीड़ उसके पास फिर इकट्ठा हो गई और वो अपनी रीति के अनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा। यीशु मसीह की ये अंतिम गलील यात्रा थी। वो यरूशलेम जा रहा है ताकि क्रूस पर चढ़ाया जाए। वो जानता था कि वहां पर क्रूस पर उसे चढ़ाया जाएगा। अति शीघ्र वो अपने शिष्यों को भी ये बताएगा जो वे अभी समझ नहीं रहे थे। उनके लिए यह एक रहस्य ही था। मसीह को स्पष्ट था, इसलिए वह जानते हुए वहां जा रहा था कि उस मृत्यु को स्वीकार करे। वह यह भी जानता था कि तीसरे दिन पुनः जी उठेगा। इसलिए वह वहां से उठकर यहूदिया के सिवानों में आया, अर्थात वह दक्षिण में यरूशलेम की ओर बढ़ रहा था। जनसमूह अब भी उसके पीछे था और वह अपने स्वभाव के अनुसार उन्हें उपदेश देता जा रहा था। आगे लिखा है, तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? फरीसियों का विचार था कि यदि वे यीशु से प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर मूसा की व्यवस्था के प्रतिकूल होगा, जिससे जनसमूह यह सिद्ध कर पाते कि यीशु एक झूठा गुरु है और वह मूसा की व्यवस्था से भिन्न शिक्षा देता है। इसलिए उन्होंने उससे पूछा, क्या यह उचित है कि अपनी पत्नी को तलाक दे? मूसा की व्यवस्था में अनिष्ठावान पत्नी के लिए विवाह विच्छेद पत्र का प्रावधान था, जो व्यवस्था विवरण की पुस्तक में लिखा था। इसलिए फरीसियों ने यीशु से यह प्रश्न किया। यद्यपि यह प्रश्न बुद्धिमानी का नहीं था, फिर भी अनेक जन ऐसे होते हैं जो बाल की खाल निकालते हैं। इस विषय में यहूदियों के प्रचलित मापदंड मुख्य रूप से दो गुरुओं पर आधारित थे। गुरु शामी के अनुसार अशुद्धता की परिभाषा है, यदि पति को सुहागरात के दिन यह ज्ञात हो कि उसकी पत्नी कुमारी नहीं है तो वह व्यभिचारिणी है और उसके पति को उसे त्यागने का पूरा अधिकार है। उसके अनुसार तलाक का एकमात्र कारण व्यभिचार था। गुरु हलल के अनुसार यदि पत्नी अपने पति की इच्छा के अनुसार वस्त्र धारण नहीं करती या झगड़ालू है और उसे प्रसन्न करने वाला भोजन तैयार नहीं करती है तो वह उसे त्याग सकता था। एक और गुरु हुआ था जिसका नाम ओकाबे था। उसके अनुसार यदि पति अपने पत्नी से अप्रसन्न है और किसी अन्य स्त्री से प्रसन्न होता है तो वह उसे त्याग सकता है, क्योंकि उसे किसी और स्त्री को लाना है जिससे वह प्रसन्न है। इन भिन्न भिन्न विचारों ने व्यवस्था को अर्थहीन बना दिया था और उनमें परस्पर मतभेद बना रहता था। यही कारण था कि उन्होंने यीशु को इस विषय में फंसाना चाहा। यीशु ने उन्हीं से प्रश्न पूछा। उसने उनको उत्तर दिया कि मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? उन्होंने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए ये आज्ञा लिखी, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। इस विषय में यहूदी विभाजित थे और बहुमत गुरु हलेल को प्राप्त था। यीशु ने उनको उत्तर देने की अपेक्षा उनसे प्रश्न किया, मूसा ने क्या आज्ञा दी है? उन्होंने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। उस समय दो प्रकार के त्याग पत्रों का चलन था। दूसरे वाले पत्र को किसी रबी द्वारा लिखा जाना होता था और तीन अन्य रबियों द्वारा हस्ताक्षर करके प्रमाणित किया जाना आवश्यक था। इस प्रकार तलाक औपचारिक रूप से मान्य हो जाता था और पत्नी को विदा किया जाता था, परंतु इसके परिणाम स्वरूप समाज में दुर्व्यवस्था व्याप्त हो रही थी। संतानों के लिए विकास का कोई ठोस आधार नहीं बन पा रहा था। इस कारण यीशु ने विवाह और तलाक के विषय में मूसा के निर्देशों पर जाकर परमेश्वर के दिव्य प्रतिमान का संदर्भ देते हुए कहा, मूसा ने यह आज्ञा तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण लिखी थी, परंतु सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी करके बनाया। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर का प्रतिमान क्या रहा है? परमेश्वर की इच्छा क्या रही है? सबसे पहले ये माना गया कि पुरुष और स्त्री भी अपने आप में अधूरे हैं। परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी करके बनाया, तब जाकर वे दोनों संयुक्त होकर एक हुए। ये परिपूर्णता तब ही प्राप्त हो सकती है जब स्त्री और पुरुष अर्थात पति और पत्नी एक हो जाएं, पति पत्नी एक दूसरे के परिपूरक होकर सर्वांगीण बनाएं। यदि दोनों एक न हो तो वे अपने आप में अधूरे हैं। और आदि में परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी करके बनाया। इसलिए पुरुष अपने माता पिता से पृथक होकर अपनी पत्नी के साथ जुड़ता है और वे दोनों एक हो जाते हैं, अर्थात सर्वांगीण या परिपूर्ण। इसलिए वे जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य पृथक न करे। इस समय यीशु परमेश्वर द्वारा स्थापित विवाह के मूलभूत ईश्वरीय प्रतिमान के विषय चर्चा कर रहा था। इसलिए हमें यह ध्यान देना है कि यीशु युगों पूर्व की परमेश्वर की आधारभूत इच्छा एवं उसके प्रतिमान की चर्चा कर रहा था। मनुष्य अभी तक अपने मन की कठोरता के कारण परमेश्वर के दिव्य प्रतिमान में सिद्ध नहीं हो पाया है। वह बार बार झुकने के लिए तैयार नहीं होता, वह क्षमा करने के लिए तैयार नहीं होता, वह दान देना नहीं चाहता, और झुकने और दान देने में मनुष्य के मन की कठोरता के असहनीय परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। यही कारण था कि मनुष्य के मन की कठोरता के कारण मूसा ने व्यवस्था में संशोधन किया था कि वे उसे विवाह विच्छेद का पत्र लिखें। यीशु ने परमेश्वर के दिव्य प्रतिमान को स्पष्ट कर दिया और यह भी कि मनुष्य उसमें सिद्ध नहीं उतरा। व्यवस्था में परमेश्वर का प्रावधान लाया गया कि विवाह विच्छेद को वैधानिकता तथा स्वीकृति प्रदान की जाए, अर्थात विवाह विच्छेद का पत्र लिखा जाए। आज भी हम हृदय की कठोरता का सामना कर रहे हैं। परमेश्वर का दिव्य प्रतिमान वास्तव में आज भी यथोचित स्थापित है। आज भी ईश्वरीय प्रतिमान यही है कि संपूर्ण जीवन विवाह एक ही हो। यही परमेश्वर का दिव्य प्रतिमान है। परमेश्वर के पास तो यही एक व्यवस्था थी। आज भी ऐसे हैं जिनके हृदय परमेश्वर के इस दिव्य प्रतिमान के विरुद्ध कठोर हैं। वे झुकते नहीं हैं, वे समर्पण नहीं करते, वे देना नहीं चाहते तथा क्षमा करना नहीं चाहते। जब परिस्थिति ऐसी हो जाती है तब वैवाहिक नरक जीवन बन जाता है। यहाँ महादुर्भाग्य है कि जब दो व्यक्ति जानते हुए या अनजाने में एक दूसरे को नाश करने को तत्पर होते हैं। निश्चय ही यह परमेश्वर का दिव्य प्रतिमान नहीं है। परमेश्वर का दिव्य प्रतिमान यह है कि वे दोनों एक हो जाएं, जिससे कि वे प्रेम और सच्ची एकता में होकर सामंजस्य बनाए रखें। इस विषय का विवेचन भी उतना ही कठिन है जितना कि विवाह विच्छेद कर पुनर्विवाह का। हम विवाह विच्छेद और पुनर्विवाह के विषयों को अत्यधिक स्वीकार्य नहीं बनाना चाहते हैं। यदि वह आपको प्रसन्न कर पाने में असमर्थ है और आपको कोई अन्य स्त्री पसंद आ गई है तो अपने पत्नी से विवाह विच्छेद कर लें, ऐसा लोग कहते थे। ये तो निश्चित है कि परमेश्वर कदापि नहीं चाहता था कि ऐसा हो। उसने तो मलाकी की पुस्तक में स्पष्ट किया है कि वह विवाह विच्छेद से घृणा करता है। वह उन असहनीय परिस्थितियों से भी घृणा करता है जो उस समय यदा कदा उत्पन्न हो जाती हैं जब आपका जीवन साथी कठोर हृदय का हो। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि कुछ नहीं होता, जो चाहे सो करो, जैसा अच्छा लगे वैसा करो। हमारी एक ही लालसा हो कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। यदि हमारे वैवाहिक अवस्था अच्छी नहीं है तो हमें उसे अच्छा बनाना चाहिए। हमें यथासंभव अपने विवाह को सफल बनाना है, अर्थात क्षमादान, प्रेम, समझ, मेल मिलाप और एकता के द्वारा। दूसरी ओर इस विषय पर चर्चा करते समय हम उनके प्रति न्याय की अवस्था रचना नहीं चाहते हैं जिनको विवाह का कटु अनुभव हुआ है। उसका अंतिम परिणाम यह हुआ कि असहनीय परिस्थितियों द्वारा स्वयं को उबारने के लिए विवाह विच्छेद को अनिवार्य बना दिया गया। यह एक दुर्भाग्य की बात है कि अनेकों बार युवावस्था में लोग ये सोचते हैं कि हम अगाध प्रेम में हैं, इसलिए प्रतीक्षा किए बिना विवाह जैसे महत्वपूर्ण निर्णय कभी भी हमें नहीं लेने चाहिए। यदि एक किशोर विवाह करता है या करती है और शीघ्र ही ये ज्ञात होता है कि उसके जीवन साथी के साथ उसका निर्वाह असंभव सा प्रतीत होता है और वे विवाह विच्छेद कर लेते हैं। अब मैं स्वयं के विषय में पौलुस की आत्मा में होकर कहता हूं। पौलुस कह रहा है, मेरे पास इस विषय में परमेश्वर से प्राप्त कोई आज्ञा नहीं है, परंतु ये कथन पौलुस का है। मैं ये नहीं मानता कि परमेश्वर उस किशोर से कहेगा, ठीक है तो तुमने अपना बिस्तर लगा लिया है, उसी में पड़े रहो, या तुमने भूल की है इसलिए अब अपने संपूर्ण जीवन उस भूल के लिए दंड भुगतते रहो जो तुमने एक मूर्ख किशोर के अवस्था में की थी। मेरे विश्वास में परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि यीशु ने विवाह की पवित्रता का बोध कराया। कैथोलिक कलीसिया इसे धार्मिक अनुष्ठान कहती है। मेरे विचार में वे ठीक कहते हैं, यह आत्मिक कार्य का बाहरी चिन्ह है। जब स्त्री और पुरुष एक होते हैं तब जो आत्मिक एकता आती है उसकी सृष्टि परमेश्वर ही ने की है। सही जीवन साथी पाने का अर्थ है पृथ्वी पर स्वर्ग पा लेना, और अनुचित साथी पाने का अर्थ है पृथ्वी पर नरक में रहना। अब मैं विशेष करके उन युवक युवतियों से बात कर रहा हूं जिन्होंने अभी विवाह नहीं किया है परंतु ऐसा विचार अवश्य रखते हैं। निर्णय लेने से पूर्व प्रार्थना में अत्यधिक समय दें। इससे पूर्व कि मैं विवाह करता, मैं अवकाश पर चला गया और उपवास और प्रार्थना में मैंने अत्यधिक समय दिया। मैं बहुत खुश हूं कि मैंने उचित निर्णय लिया। मैं खुश हूं कि उपवास और प्रार्थना के समय परमेश्वर ने यह निर्णय लेने में मेरा मार्गदर्शन किया। मेरे कहने का अर्थ यह है कि यह एक ऐसा विषय है जिसे आप न तो अपने मन पर और न ही अपनी भावनाओं पर छोड़ें। आप इसका अवलोकन प्रार्थना में रहते हुए करें। भूतकाल में भूल का सुधार करने से उत्तम है वर्तमान में भूल सुधार लेना। मेरे विचार में तलाकशुदा व्यक्ति यदि फिर से विवाह कर ले तो परमेश्वर इसे नरक में नहीं डाल देता। मैं तो यह मानता हूं कि यदि आप स्वयं को पुनर्विवाह में पाते हैं तो आप अपने विवाह को सर्वोत्तम अवस्था प्रदान करें। अपने विवाह को वो सब कुछ बनने दो जो परमेश्वर चाहता है। मैं इसके पक्ष में मैं नहीं कि आप कहें मैं तो पहले भी विवाह कर चुका हूं और तुम्हें भी तलाक देना उचित ही होगा। बाइबल से हमें स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होता है कि मनुष्य को उस बुलाहट पर अटल रहना चाहिए जिसमें वह बुलाया गया है। जब मसीह ने आपको बुलाया और आपने उसे प्रभु स्वीकार किया है तब आपकी अवस्था क्या थी? संभव है आप विवाहित थे, या आप तलाकशुदा थे, या पुनर्विवाहित थे। अब उपस्थित परिस्थितियों में ही परमेश्वर को सम्मान और महिमा प्रदान करने के कार्य करो। हमें दाऊद की ओर ध्यान देना है जिसने बतशेबा के साथ व्यभिचार किया था और बाद में उसके साथ विवाह कर लिया। परमेश्वर ने दाऊद को क्षमा कर दिया तथा उसे दया और अनुग्रह प्रदान किया। नबी नातान ने उससे कहा तेरा पाप क्षमा किया गया, परंतु उसे अपने पाप की कीमत इस तरह चुकानी पड़ी कि उनका प्रथम पुत्र मर गया। परमेश्वर ने दाऊद को उस पाप की क्षमा प्रदान करी। अपने विवाह के संबंध में आपका भी अनुभव दुखदायी रहा होगा। मैं नहीं जानता कि कुछ व्यक्ति या तो सामंजस्य बनाए रखने में अमैध हैं, या फिर यह कि जीवन साथी चुनने में वे उचित निर्णय नहीं ले पाते। संभव है कि आप अपने विवाहित जीवन में हानि उठा चुके हैं, परंतु मैं जानता हूं कि आपकी सहायता हेतु परमेश्वर सामर्थी है। जब नव दंपति मसीह में होकर मतभेदों का समाधान स्वयं खोजते हैं तो परमेश्वर को महिमा मिलती है। इस प्रकार वे मसीह में होकर एक प्रेम पूर्ण संबंध में प्रवेश करते हैं। 10वीं आयत में लिखा है और घर में चेलों ने इस विषय में उससे फिर पूछा। शिष्य यीशु के कहने का तात्पर्य नहीं समझे थे। वे ठीक से समझ नहीं पाए कि वह अपने उत्तर में फरीसियों को क्या संदेश दे रहा था, इसलिए उन्होंने उसे स्पष्टीकरण मांगा। 11वीं आयत में लिखा है उसने उनसे कहा जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करे तो वह उस पहली के विरोध में व्यभिचार करता है, और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर। पत्नी को त्यागने के लिए उनकी व्यवस्था में कुछ एक कारणों का प्रावधान था। यदि पति अपने पत्नी पर झूठा आरोप लगाता है कि वह विवाह के बाद कुंवारी नहीं पाई गई तो उसे पत्नी को तलाक देने का अधिकार था। दूसरी ओर यदि पति व्यभिचार करता तो पत्नी को उसे त्याग देने का अधिकार था, और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से ब्याह करे तो वो व्यभिचार करती है। यहाँ निर्दोष पक्ष के विषय में कुछ नहीं कहा गया है, परंतु जैसा कि मैं कह चुका हूं मनुष्य का स्वभाव दोष लगाने का ही होता है। अब अपने क्रूस की राह पर यीशु अग्रसर है और चेले उसके साथ है। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। आज भी वहां यह प्रथा है कि वे गुरुओं के पास आशीष प्राप्त करने जाते हैं। आज भी यरूशलेम में एक बड़ा ही सजीव रब्बी है। वो छोटे कद का व्यक्तित्व है परंतु दाढ़ी लंबी रखता है। जब विलाप की दीवार के ठीक सामने वह चहलकदमी करते हुए अपनी प्रार्थनाएं जोर से पढ़ता है तब आप उसकी आवाज सुन सकते हैं, क्योंकि वह वास्तव में बहुत जोर से उच्चारण करता है। वे अनेक युवक जो रबी की शिक्षा ले रहे हैं उसे अत्यधिक आदर देते हैं। ये युवक उसके पास आते हैं और वह उनके सिरों पर हाथ रखकर उन्हें आशीष देता है। उसे हाथ रखते देखना और इन युवकों को उसके पास जाकर आशीष ग्रहण करते देखना अति आकर्षक दृश्य होता है। यही बात वहां हो रही थी कि बच्चे यीशु के पास लाए जा रहे थे। वहां की यह प्रथा थी कि जब बच्चा एक वर्ष का हो जाए तो उसे रबियों के पास आशीष के लिए लाए जाए। यही कारण था कि वह उन पर हाथ रखे। शिष्य उन्हें डांट रहे थे, चलो हटो, प्रभु को परेशान मत करो, वो अभी बहुत व्यस्त है। ये माता पिता अपने बच्चों को यीशु के पास लाने की लालसा रखते थे। उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। यहां ध्यान रखिए कि यीशु क्रूस की राह पर है और उसके लिए यह एक अंतर्वेदना का समय है। चेलों की मनोवृत्ति देखिए कि वे सोचते हैं कि यीशु के पास समय नहीं है और वह भी बच्चों के लिए। यीशु ने कहा, बच्चों को मना मत करो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। 15वीं आयत, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई ग्रहण न करे वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। बच्चों को मना मत करो। क्या आप जानते हैं कि बच्चों में एक विशेष मनोरम आकर्षण होता है? मेरे विचार में बच्चा स्वभाव से ही परमेश्वर में विश्वास रखता है। मेरे विचार में नास्तिक बनने के लिए उन्हें विशेष शिक्षा लेनी होगी। मैं तो यही मानता हूं कि बच्चा अपने स्वभाव के कारण सहज वृत्ति द्वारा परमेश्वर में विश्वास रखता है। बच्चे में विश्वास की सरलता व मन लुभावन विश्वास एक स्वाभाविक विश्वास है। मैं जब भी अस्वस्थ होता हूं तो मैं अपने नाती पोतों से प्रार्थना की याचना करता हूं। ऐसा विश्वास, अति मन भावना विश्वास। इसलिए तो यीशु ने कहा कि यदि तुम छोटे बच्चों के स्वरूप नहीं हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रवेश की एकमात्र विधि है कि बच्चे के स्वरूप बनना। 16वीं आयत में, और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। मुझे यह दृश्य बहुत अच्छा लगता है। मेरे विचार में वे अपने आप ही यीशु की ओर आकर्षित हो जाते हैं। आगे लिखा है, और जब वह निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। अनेक टीकाकार कहते हैं कि यीशु उसे डांट रहा था क्योंकि वह उसे गुरु कह रहा था। मेरे विचार में यीशु उसे सचेत करना चाहता था। यीशु उस युवक से या तो यह कह रहा था कि मैं अच्छा नहीं हूं, या फिर यह कह रहा था कि मैं परमेश्वर हूं। मैं कहूं कि वह ये दूसरी बात कह रहा था, क्योंकि उचित था कि वह उसे समझाए कि मैं परमेश्वर हूं। एक ही अच्छा है और वह परमेश्वर है। तूने मुझे अच्छा क्यों कहा? क्या इसलिए कि मैं परमेश्वर हूं? और उसका मेल यीशु के अन्य शब्दों के साथ ठीक बैठता है। सत्य तो यह है कि यदि यीशु ने उस पर यह प्रकट नहीं किया होता कि वह परमेश्वर है, तो उसके अन्य शब्द ईश निंदक होते, क्योंकि यीशु उससे आगे कहता है, तुझे अपने जीवन के केंद्र में परमेश्वर की आवश्यकता है। मेरे पीछे हो ले, तेरे जीवन का केंद्र ठीक नहीं है, वहां धन भरा हुआ है, तुझे अपने जीवन के नए केंद्र को स्थापित करना है। यदि तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाना चाहता है तो तुझे तेरे जीवन के केंद्र में परमेश्वर की आवश्यकता है। मेरे पीछे हो ले। इसलिए यीशु ने उसे सचेत किया, तू मुझे अच्छा क्यों कहता है? एक ही अच्छा है और वो परमेश्वर है। 19वीं आयत से आगे लिखा है, तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने माता और पिता का आदर करना। उसने उसे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूं। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। यीशु ने उस युवक को देखा और उसके सामने 10 आज्ञाओं की दूसरी तख्ती रख दी। उस युवक ने उत्तर दिया, मैं तो अपनी युवावस्था से ही इनका पालन करता आ रहा हूं। यीशु ने उसकी ओर देखा और उसके प्रति उसके दिल में प्रेम उमड़ आया। उसने कहा, ठीक है। 21वीं आयत में, और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। मत्ती हमें बताता है कि उस युवक ने पूछा, मुझ में क्या कमी रह गई? यीशु ने कहा, एक बात की कमी है। आगे लिखा है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, यीशु के कहने का अर्थ यह नहीं था कि जा अपना सब कुछ बेचकर कंगालों में बांट दे। ये तो आकस्मिक ही था। यीशु के कहने का मुख्य अर्थ था कि अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। परंतु उसकी समस्या तो यह थी कि उसकी असीम संपदा उसे अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे हो लेने से रोक रही थी। मैं नहीं जानता कि आपके जीवन में ऐसी क्या बाधा है जो आपको रोक रही है। आप आकर अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे हो ले। संभव है कि आपकी नौकरी, आपकी आकांक्षाएं शायद आपके जीवन में बाधा उत्पन्न करती होंगी। जीवन में आपका लक्ष्य जो भी है उसे मुक्त होकर आप आइए और अपना क्रूस उठाइए और यीशु के पीछे हो लीजिए। यही तो यीशु कह रहा है। उसने उस युवक को तो स्पष्ट दिखा दिया था कि वह कौन सी बाधा है जो उसे रोक रही थी। इस युवक की समस्या थी कि धन उसका परमेश्वर था। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, इसलिए अपने झूठे देवता से मुक्ति पा लो और आकर मेरे पीछे हो लो। सच्चे परमेश्वर को पहचानो, परमेश्वर को अपने जीवन का केंद्र मना लो। जहां तक अपने जीवन का केंद्र परमेश्वर होने का प्रश्न है, तो मसीह का वचन आज भी हमारे हृदयों में ज्यों का त्यों है, अर्थात मसीह यीशु के पीछे चलना। यही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश का मार्ग है, यही अनंत जीवन का मार्ग है, एकमात्र मार्ग यही है। क्या आपके जीवन का केंद्र परमेश्वर है? आपके जीवन का केंद्र परमेश्वर को बनने से रोकने वाली प्रत्येक बाधा से मुक्त हो जाइए। वह युवक मुंह लटकाए चला गया। वह दुखी हो गया क्योंकि उसके पास असीम संपत्ति थी। क्या ये एक दूसरे के विरोधी नहीं? अनेक हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे सुखी रहने के लिए बहुत पैसा चाहिए। परंतु देखिए, बाइबल क्या कहती है कि एक धनी व्यक्ति दुखी हो गया। अब आप ये सोचेंगे कि उसका अनंत जीवन नाश हो गया। हम नहीं जानते, यह भी तो हो सकता है कि उसके बाद में उसने यीशु की बातों पर ध्यान दिया हो और अपने मुंशी को बुलाकर कहा हो, सब कुछ बेच दो और दान कर दो, मैं बाद में मिलता हूं, मैं यीशु के पीछे जा रहा हूं। या वह अपने दुखों में लौट गया हो और धन को देवता बनाकर उसकी उपासना में जीवन बिताता हो। आगे लिखा है, यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इब्रानियों की समझ में किसी मनुष्य के पास संपदा होने का अर्थ था कि उसे परमेश्वर की आशीष प्राप्त है। दूसरे शब्दों में, यदि वह समृद्ध है तो उसे परमेश्वर अनुग्रह प्राप्त है और यही कारण है कि उसके पास इतनी संपत्ति है। किसी व्यक्ति के परमेश्वर के निकट होने का या उसके विश्वास को परखने का यही एक चिन्ह था। इसलिए जब यीशु ने कहा धनी मनुष्य का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है, तब वह चौंक गए। क्या मतलब प्रभु जी? धन तो परमेश्वर का अनुग्रह है। आज भी ऐसे मनुष्य हैं जिनका विचार है कि धन संपत्ति आत्मिकता का चिन्ह है और वे प्रचार करते हैं कि धार्मिकता समृद्धि का मार्ग है। पौलुस तिमुथियुस से कहता है कि इन बातों से दूर रहे। यीशु के इस कथन पर शिष्य विस्मित हो गए, इसलिए यीशु को स्पष्ट कहना पड़ा। इस पर यीशु ने फिर उनको उत्तर दिया, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। जैसा मैंने पहले कहा है कि कुछ लोगों का कहना है कि वहां के लोग नगर के मुख्य द्वार में छोटी खिड़की को सुई का नाका कहते थे। रात में द्वार बंद कर दिए जाते थे और फिर प्रातःकाल तक खोले नहीं जाते थे कि कहीं ऐसा न हो कि दुश्मन अंदर आ जाए। इसलिए द्वार में एक छोटी खिड़की का प्रावधान था कि कोई नागरिक रात में आता है तो उसे नगर प्रवेश में बाधा न हो। यीशु इसी खिड़की के विषय कह रहा था। जब कोई नागरिक ऊंट पर सवार होकर आता था तो उस खिड़की से ऊंट को अंदर लाना अत्यधिक कठिन होता था। कोई अंदर से खींचता था तो कोई बाहर से उसे धक्का देता था और बड़ी कठिनाई से वे उस ऊंट को भीतर प्रवेश कराते थे। बड़े परिश्रम और पसीना बहा बहा कर वे उसे प्रवेश कराते थे। नहीं, यीशु ये नहीं कह रहा था। यीशु के कहने का सरल अर्थ था, यत्न से प्रयास करो, निष्ठावान बनो तो निश्चय ही उद्धार प्राप्त होगा। बिल्कुल नहीं, यीशु कह रहा है कि यह असंभव है। शिष्य बहुत अचंभित हुए। तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? धनी तो स्वर्ग नहीं जाएगा, तब कौन जाएगा? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता। परमेश्वर हमें इसका बोध करा। स्वयं मनुष्य से तो उद्धार संभव नहीं। ऐसा कोई मार्ग नहीं कि मनुष्य स्वयं अपना उद्धार करा ले। वो कैसा भी प्रयास करे, कैसे भी धार्मिक कार्य करे, कैसे भी निष्ठावान आचरण करे, कोई भी मनुष्य अपना उद्धार स्वयं नहीं कर सकता। गतसमनी की वाटिका में यीशु ने प्रार्थना की, पिता हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। यदि मनुष्य के उद्धार का अन्य कोई मार्ग हो, मनुष्य के स्वयं के द्वारा ये संभव नहीं, परंतु यीशु ने कहा, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आप जितने भी बुरे हैं, परमेश्वर के लिए संभव है कि वो आपका उद्धार करे। आप परमेश्वर की पहुंच से बाहर नहीं हैं। आप अपनी क्षमताओं से बाहर हैं। आप व्यक्ति की क्षमता से बाहर हैं, परंतु परमेश्वर की क्षमता से बाहर नहीं हैं। क्या हमने नहीं देखा कि जब मनुष्य हार जाता है तो परमेश्वर कार्य करता है? आप जानते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें देखकर मैं कहता हूं उनका उद्धार पाना असंभव है। वो परमेश्वर से कितना दूर हो गए हैं। और कुछ लोगों के बारे में तो मैं पूरी तरह से निराश हो चुका हूं। सारी आशाएं छोड़ दी हैं। वे किसी प्रकार उद्धार नहीं पा सकते, परंतु परमेश्वर उन्हें उद्धार प्रदान कर देता है, जबकि मैंने तो सोचा था कि यह असंभव है। 28वीं आयत के अंदर पतरस उससे कहने लगा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। वो धनी युवक सरदार उस कीमत को चुकाने में असहमत सा प्रतीत होता था, परंतु पतरस ने कहा, हमने तो ऐसा ही किया, हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। 29वीं आयत में यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या लड़के बालों या खेतों को छोड़ दिया हो। अनेक यहूदियों ने यीशु को देखा, उस पर विश्वास किया और उसे स्वीकार किया, और यहूदी संस्कृति की कठोरता के परिणाम स्वरूप उन्हें अपना उत्तराधिकार, अपने मकान, परिवार आदि खोने पड़े। उन्हें विधर्मी कहकर घर से निकाल दिया गया। यहां तक कि अनेक यहूदी परिवारों में तो मसीह को ग्रहण करने वाले विश्वासी को मरा हुआ जानकर घरों में अंतिम संस्कार भी किए गए। ऐसा प्रतीत होता है कि पौलुस को भी अपनी पत्नी खोनी पड़ी थी। यीशु ने कहा, किसी भी व्यक्ति ने अपना परिवार या भाई या बहन, पिता, माता, पत्नी या बच्चों को या भूमि को मेरे कारण और सुसमाचार के कारण नहीं छोड़ा, और अब इस समय 100 गुना न पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और लड़के वालों और खेतों को पर उपद्रव के साथ और परलोक पे अनंत जीवन। आप सताए जाएंगे यदि आप अपने भाई, बहन और माता से दूर हो गए हैं, तो परमेश्वर के परिवार में आपको 100 गुना अधिक लाभ होगा। आप में से कुछ हैं जिनके मसीही विश्वास ने आपके परिवार में दरार डाल दी है। एक बार मैं एक विवाह संस्कार पूर्व कह रहा था, जब हम पीछे के कमरे में थे, तब दुल्हे ने मुझसे कहा, सुसमाचार सुनाइए। उसने कहा, मेरी माता ने कहा है कि यदि मैंने फिर कभी मसीह का नाम लिया तो मुझे घर में रहने की जरूरत नहीं। उसने कहा, वो तो यहाँ है, इसलिए सुसमाचार सुनाइए। उस युवक को हानि उठानी पड़ी, परंतु परमेश्वर के परिवार में वह प्रेम, वह संबंध, वह लगाव जिसमें हम उसी समय सहभागी बनाए गए हैं जिस समय हम मसीह में एक किए गए हैं। मैं समस्त भाइयों और बहनों को देखता हूं और जो कुछ हमारे पास यहाँ है, तो मुझे बोध होता है कि क्या ही धन्य है कि हम सब परमेश्वर का एक महान परिवार है। यद्यपि मसीही होने के कारण अपने सगे संबंधियों से हमारा संबंध टूट गया है, परंतु हम एक ऐसे विस्तृत परिवार के नए सदस्य बन गए हैं। मैं स्वयं को बड़ा ही सौभाग्यशाली समझता हूं कि मेरा यह परिवार प्रभु से प्रेम रखता है और उसकी सेवा करता है। यह एक आशीष ही तो है। मेरे रिश्ते के कई भाई हैं जो प्रभु को नहीं जानते। मेरे आंटी, अंकल हैं जो प्रभु से दूर हैं। आप जानते हैं कि मैं अपनी अपेक्षा आप लोगों के अधिक, बहुत अधिक निकट हूं। इसलिए यीशु ने कहा, किसी ने तुम्हें छोड़ा, परंतु तुम्हें 100 गुना प्राप्त होगा। तुम्हें सताया जाएगा, तुम्हारा परिवार स्वयं तुम्हें सताएगा, परंतु तुम्हें नए संसार में अनंत जीवन प्राप्त होगा। 31वीं आयत में लिखा है, पर बहुतेरे जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। यीशु ने यह बात यहां क्यों कही मैं नहीं जानता। और वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे। वे यरूशलेम की राह पर हैं, और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था, और वे अचंभा करने लगे, और जो उसके पीछे चलते थे डरने लगे। तब वह फिर उन बारहों को लेकर उनसे वे बातें कहने लगा जो उस पर आने वाली थी। उसने अपने शिष्यों को पास बुलाकर उनसे कहना आरंभ किया। 33वीं आयत में कि देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे और वे उसको ठट्टों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे और 3 दिन के बाद वो जी उठेगा। यहां यीशु यह कह रहा है कि शास्त्री और याजक उसे मृत्यु दंड देकर अन्य जातियों को सौंप देंगे कि वे उसे पूरा करें। अन्य जाति उसकी निंदा करेंगे। रोमी सिपाहियों ने ही तो उसको बैंजनी वस्त्र पहनाकर उसका उपहास किया था। वे उसको कोड़ों से मारेंगे। रोमी सिपाही ही थे जिन्होंने उसे कोड़ों से मारा था। वे उस पर थूकेंगे, यह भी बाइबल में लिखा है, और वे अर्थात अन्य जाति जन उसे मार डालेंगे। यह काम रोमियों ने किया, परंतु वो 3रे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। 35वीं आयत से आगे लिखा है, तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वही तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा कि हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिनी और दूसरे तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं क्या ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूं तुम पियोगे। हेरोदेस ने हाथ बढ़ाया और याकूब का सिर कलम किया गया। याकूब आरंभिक शहीदों में से एक था। और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं उसे लोगे, पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और बाएं बिठाना मेरा काम नहीं है। परमेश्वर ने पहले से ही उन्हें अभिषेक किया हुआ है और पूर्व निर्धारित भी किया हुआ है। यदि आपको स्मरण हो तो पूर्व कैसरिया फिलिपी से आते समय शिष्य परस्पर विवाद कर रहे थे कि स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा कौन होगा, और जब वे घर आ गए तो यीशु ने पूछा, तुम लोग रास्ते में क्या विवाद कर रहे थे? यहां हम देखते हैं कि याकूब और यूहन्ना प्रभु के पास आए और कहा, प्रभु आप हम पर एक कृपा करेंगे, हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। अर्थात वे अभी तक बड़े बनने की इच्छा रखते थे, वे प्रतिष्ठा पाने की लालसा रखते थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो तुम्हें आग से होकर निकलना होगा, तुम्हें कटोरा पीना होगा, तुम्हें वो बपतिस्मा लेना होगा जो मैंने लिया है। जिस कृपा दृष्टि की तुम याचना कर रहे हो वो तो पूर्व निर्धारित है, वो तो पहले से ही प्रदान की जा चुकी है। यह सुनकर दसों याकूब और यूहन्ना पर रिसी आने लगे। कैसी अजीब बात है यह धार्मिक क्रोध, जबकि सबके मन एक ही कामना करते होंगे। और यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं, पर तुम में ऐसा नहीं है। अन्य जाति गैर यहूदियों के लिए माना जाता था कि वे अधिकार और प्रतिष्ठा और मनुष्यों पर प्रशासन की लालसा रखते थे। यीशु ने कहा, तुम्हारे मध्य ऐसा न हो। परमेश्वर का राज्य मनुष्य के राज्य से भिन्न है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में 43वीं आयत में लिखा है, परन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। यहां यीशु एक बड़ी महत्वपूर्ण बात सिखा रहा है कि यदि आपको प्रशासनिक अफसर बनना है, यदि आपको अध्यक्ष बनना है, यदि आपको प्रधान बनना है, तो पहले सेवक बनो। महानता का मार्ग सेवा है। यह अति महत्वपूर्ण है कि मैं जानूं कि मेरी मानव सेवा वास्तव में परमेश्वर की सेवा है। मैं प्रभु के नाम में सेवा करता हूं। मेरा सेवा का दृष्टिकोण यह है कि मैं इस प्रकार सेवा करता हूं कि मानव प्रभु की सेवा कर रहा हूं। तुम जो कुछ भी करते हो शब्दों या कार्यों के द्वारा, सब कुछ प्रभु की महिमा के निमित्त किया करो, और तुम्हें यह बोध हो जाए कि प्रभु की सेवा मानव सेवा है, क्योंकि उसके दास होने के कारण यही प्रभु की अनिवार्यता है। इसलिए महानता का मार्ग नम्रता का मार्ग है, अर्थात सेवक बनना होगा। 46वीं आयत में लिखा है, और वे यरीहो में आए, और अब वे यरदन पार कर यरीहो में प्रवेश कर गए। यह उसका अंतिम शिविर है। इसके पश्चात वह 20 मील चलकर यरूशलेम पहुंच जाएगा, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी तो तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, ये दृष्टिहीन व्यक्ति जन समूह के ही पश्चाप सुन सकता था। आप तो जानते ही हैं कि दृष्टिहीन व्यक्तियों की सुनने की ताकत बहुत विकसित होती है। चूंकि वे देख नहीं सकते और वे सुन नहीं सकते, इसलिए वे निर्णय लेने की क्षमता को विकसित कर लेते हैं। उसने उस जन समूह के कोलाहल को सुनकर उसने पूछा, क्या हो रहा है भाई, कौन आ रहा है? लोगों ने उसे बताया, यीशु नासरी आ रहा है। और उसने सोचा, यही मेरा मौका है। और वो पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, पर वह और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। कुछ लोगों का कहना है कि यह वस्त्र भिखारी का विशेष वस्त्र होता था, जिससे भिखारी की पहचान होती थी। उसने उस वस्त्र को उतार फेंका क्योंकि वह जानता था कि उसे अब भीख मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। उसका यह विश्वास था कि यदि वह एक बार यीशु के निकट आ गया तो सब ठीक हो जाएगा। वह दृष्टिदान प्राप्त करेगा और उसका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए वह यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। अति संभव है कि यीशु ने उसे अपना वस्त्र फेंकते देखा था। उसने उसके विश्वास को देखा कि उसके मन में कैसा दृढ़ विश्वास है, और उसने कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। 52वीं आयत, और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। जहां तक आत्मिक उपमाओं का प्रश्न है, इस कहानी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है।